ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृतार्थैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय नरभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकासरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि त्वया विना
ভুলে যাবো এর মধ্যে চিহ্নটা ছিল এই কোথায় রে
৩২ পেজ
অঙ্গনাধারী বেশধারী স্বর্গ কি দেবী কে রূপ মে বেশ ধারণ করনে বালে কৃষ্ণ রাধিকা জি কা মহিমা কা বর্ণন কর রহে হ্যায় আর কা রহে হ্যায় হে দেবী শুনো इन तीनों जगतों में या तीनों जगतों के ना जल्दी कर आगे आस्ते पर इन तीन जगतों में और तीनों जगतों से ऊपर वैकुंठ आदि धाम में ऐसी कौन सी रमणी है जो तुम्हारे समान प्रेमवती होने का साहस भी मन ही मन भी कर सके। मैं तुम्हारे इन गुणों का वर्णन कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती देवी की सभा में मैंने सुना है। ये मेरे वचन नहीं। उस सभा में मैं जो कुछ सुना वो सब मैं कह रही हूं। तुम्हारे गुणों को समझ कर मेरे हृदय में तुमसे मिलने के लिए बड़ी उत्कंठा हुई और तुमसे मिलकर मेरी अभिलाषा पूर्ण तो हुई किंतु हमारे हृदय में एक बहुत संताप दुख उत्पन्न हुआ। दुख की अग्नि ज्वलित हुई और उसके ताप से मेरी अंतरात्मा बड़ी तप्त हो रही है, दुखी हो रही है, न जाने क्यों फट नहीं रही। उस ब्रजंगना की प्रेम भरी बात को सुनकर श्रीमती राधिका जी ने कहा, सखी तुम्हें क्या संताप है, तुम बतलाती नहीं हो। वो कौन सा संताप है जिसको तुम व्यक्त नहीं कर पा रही। तुम निसंकोच होकर के उस बात को हमारे निकट बतलाओ। राधिका, बार बार प्रश्न करने पर भी देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोलना चाह करके भी बोल नहीं सके, उनका कंठ रुद्ध हो गया, वो कुछ बतला नहीं सके। राधिका तो स्वयं बड़ी मधुर स्वभाव की हैं, अपने अंचलों से, अपने अंचल से उस देवी के मुख को और आंख के आंसुओं को पोंछा और पोंछने लगी। उस समय में श्री कृष्ण की आंतरिक गंभीर दुख की जो अभिनय था, दुख का अभिनय, ये लोग तो समझ नहीं सके किंतु कृष्ण अभिनय कर रहे थे। उसको सत्य बतलाने के लिए, उसे सचमुच यह सत्य है, मेरी दशा जो है सत्य है, मुझे बहुत ही दुख है, उसको प्रतिपन्न करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए रोने लगे। तब उसी समय पुनः देवांगनाधारी वेशधारी श्री कृष्ण कुछ समय तक ऐसी कुछ चुप रहने के बाद अंत में धैर्य धारण कर राधिका से बोले, हे मुग्धे, कृष्ण बड़े कामुक हैं, उनमें बहुत गुण हैं, सब गुणों से संपन्न हैं, किंतु अत्यंत कामुक हैं। तुम्हारा उस कृष्ण से, कामुक कृष्ण से प्रेम कैसे हो गया। इस जगत में तुम्हारे प्रेम की कोई भी तुलना नहीं है और तुम्हारे प्रेम में तनिक भी कोई उपाधि नहीं है, कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं है। और यह कामना वैसी होने के कारण कभी नष्ट नहीं होती और इसका वेग इतना प्रबल है तुम्हारे प्रेम का कि किसी प्रकार से उसे रोका नहीं जा सकता, कोई नहीं रोक सकता। किंतु समझो, जानबूझ करके भी यदि कोई अयोग्य स्थान में विश्वास स्थापन करता है, उसे प्रीति करता है, तो केवल अपने को और दूसरों को दुखी प्रदान करता है। क्या तात्पर्य, तुम्हारा प्रेम निश्चल है, सब कुछ ठीक है, किंतु तुम्हारा प्रेम जो लग गया जिससे, वो कामुक अस्थिर चंचल वाले व्यक्ति से, इसलिए तुम भी दुखी रहेगी। सब सब समझो, कहां गए। आप कहां से आए हैं? पता ठीक है, बैठना चाहिए तो बैठिए, इधर आ जाइए, कहीं बीच में बैठ जाइए। वहीं पर बैठ जाइए।
So Krishna, Sri Krishna, disguised as a Devakanya, a lady from the heavenly planets, he has been describing the glories of Srimati Radhika. And Krishna said, "Hey Devi, in the three worlds, even including the Vaikuntha planets, who is the woman, who is the girl who even in her mind dared to consider herself equal to you? There is no one equal to you in this world. I heard this in the assembly of Parvati about your superiority. Hearing your glory, I had a burning desire to meet you. In my heart, a great enthusiasm to have your sangha came in my heart. So this desire is fulfilled, but still, I have one great sadness. That sadness, the burning sensation caused by that unfulfilled desire, is giving me great unhappiness." Srimati Radhika replied, "Oh Sakhi, please tell me, what is your unhappiness?" Again and again, Srimati Radhika asked, "Describe why you're feeling sad." But despite Radhika's asking again and again, Krishna's throat was choked, and even though he desired to speak, he could not speak. Srimati Radhika's nature is very, very sweet and affectionate. Therefore, with her own anchal, her own cloth, she cleansed away the tears from the face of that Krishna. Krishna is performing here one drama, weeping, weeping, and then remaining silent. He is trying to increase the curiosity of Radhika. Krishna said, "Hey Mukti, I have one question. Krishna is very lusty, very passionate fellow. He has many, many bad qualities. So I cannot understand how you have loved Krishna. Your prem is completely pure. Your prem has no fault. In your prem there is no desire for your own happiness. Therefore your prem can never be destroyed, it can never be lost. Your prem is so forceful it can never be checked by any circumstances. But still, how is it that you have given your prem, your affection and your heart to such an unqualified, restless, lusty person like Krishna? Definitely this will be the cause of your suffering and suffering to others."
Who is you speaking this?
Wiping the tears from that Krishna.
What?
Yeah, but Radhika unke aansu pooch rahi hai, unka sharir martin kar rahi hai.
But then there is no. There is contact.
Only aansu pooch rahi
hai. Only clearing the tears.
No master satsang.
So, not now. No. But Krishna feels like yadyapi Sri Krishna Rupa Madhurya Viratva Shrestha Saubhag or Jas Adi Guna Sampatti Se Parikurna Hai. उनके सब त्रिलोक में कोई नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, सब गुण से विभूषित होने पर भी प्रेम की विवेचना उनके अंदर नहीं है। अर्थात प्रेम के संबंध में विचार करने की उनको सामर्थ्य नहीं है। बस यही एक दोष उनके सारों गुणों को नष्ट कर देता है, बस एक गुण। और से का मुक्ता ही उनके समस्त मूल जो दोष है उनका एक है, एक ही कारण है। अतः इस प्रकार के व्यक्ति से को प्रेमी के रूप में ग्रहण करना, उसे प्रेम करना कदापि उचित नहीं है। देखो रास के दिन में तुम्हारे सहित नित्य किया, तरह तरह से विलास किया, और बारंबार तुम्हारे प्रति कृत्रिम बनावटी प्रेम प्रकाश किया, और पीछे तुम सारी सरलमती वाली तुमको रात में कुंज के बीच में बुला करके भी ये वहां मेरे साथ में अभिशाप करना आना अभिशाप कराया, और घोर कपटी कृष्णा वहां नहीं आकर के दूसरी जगह जाकर दूसरी रमणी के साथ में के पास में चले गए और तुम्हें छोड़ दिया। क्या समझा? इतना कपटी धूर्त है कि तुमको बुलाया कुंज में और वहां ना जाकर के वो दूसरी रमणी के पास में चला। ये भी मैंने देखा, और उस समय तुम विलाप कर रही थी और उसे समझ कर सब सखियां बड़ी दुखित थी। वन की लताएं, वृक्ष, पशु पक्षी सभी रो रहे थे तुम्हारे लिए। तुम रो रही थी इसलिए वो लोग भी रो रहे हैं, और मैं बंसीबट में रहकर अलक्षित रूप में ये सब देख रहा था। तुम भी रो रही है, पशु पक्षी सब लोग रो रहे हैं, किंतु वो कपटी उसका चित्त नहीं रोया। इन सब बातों का तात्पर्य यह है राधिका को कृष्ण के विरह में मोहनाख्य महाभाव उदित होता है। मोहनाख्य भाव उदित होने पर प्रेम वैचित्र इत्यादि विविध प्रकार की दशाएं होती हैं, अपस्मार घृणा इत्यादि होती है, और उस समय ब्रह्मांड को भी क्षोभ होता है, उसका क्षोभ देखकर दुख देखकर। तिर्यक प्राणी भी, तिर्यक माने पशु वृक्ष लता इत्यादि प्राणी भी रोदनम रोदन करते हैं, रोदन करने लगते। ये मोहनाख्य महाभाव का कार्य है, इसलिए समझो कि उस समय में कृष्ण के विरह में जब ये रोदन कर रही थी उनको मोहनाख्य भाव उदित हुआ और पशु प्राणी सब रोने लगे। उज्जल नीलमणि ग्रंथ में स्थाई भाव प्रकरण में इस सब का उल्लेख किया गया है। इसलिए यहां पर भी वृक्ष लता इत्यादि रोदन करने लगे, ऐसा उल्लेख। अब देवंगना वेशधारी श्री कृष्ण फिर बोलने लगे, ये सब कौन कह रहा है? कृष्ण ही कह रहे। इस प्रकार रास रजनी में जब रास हो रही थी रात में, तुम्हारे साथ में नित्य इत्यादि कर रहे हैं और कृष्ण समस्त ब्रज सुंदरियों को छोड़ करके केवल मात्र तुमको लेकर के अंतर्हित हो गए, वहां से अंतर ध्यान हो गए और तुम्हारे प्रति यथेष्ट प्रीति दिखलाया, किंतु कुछ क्षण तक ही तुम्हारे साथ में रहे और तुम उस समय में ये कहा कि मैं थक गई हूं, मैं चल नहीं सकती, अब तुम कहीं ले करके मुझे चल सकते हैं। और ऐसा करके ज्यों ही तुम उनके कंधे पर चढ़ने के लिए प्रस्तुत हुई और तुम्हें छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया।
Who is speaking? This is Krishna himself describing himself. Krishna said, Krishna's beauty, his fame, everything about him is complete. There is no one equal to him in the three worlds, but he has one huge fault. That is, he has no discrimination or understanding of what is prema or affection. This fault destroys all his good qualities, and in fact, this is the root of all his bad qualities also. So therefore, to give affection to him is completely improper. Krishna said, I was hiding in Bansibad, and I was watching all your pastimes, especially the dancing of Sri Ras Lila and other leelas where you met with him. I saw that his affection for you was simply an artificial show. He himself called you and arranged to meet you in the Nikunja at a particular place at a particular time. But what does he do? At that time he goes to another gopi. And he leaves you alone. Therefore he is definitely the most crooked fellow. I saw you, all the gopis, crying, especially you. And all the gopis, feeling your pain, also wept for you. But not only you, all the plants, all the animals, all the creepers, also wept in sympathy with you, Radhe. I saw all of this from Bansi Bhat, but I saw that cheetah in his heart, not even one tear came. He did not cry at all. Here, Guru Maharaj is saying, Srimati Radhika is manifesting from Mohanakya Bhav. In Mohanakya Bhav, many ecstatic emotions are experienced, like prem vaichitya. In Sri Vrijvajanamani, in the Sky Bhav section, this has all been described. How when Srimati Radhika experiences Mohanakya Bhav, all the life forms in the universe also weep with her. Such is the effect of this ecstatic emotion. Krishna continued, I saw how in Ras Lila he left all other gopis for you, and he showed so much affection for you, but only for a moment. Then you said, I am tired, I cannot walk. Krishna took you on his shoulder, and then he very cruelly left you and disappeared.
उस समय तुम्हारे जोर से क्रंदन, विलाप और छड़छड़ में मूर्छा और नाना प्रकार की चेष्टाओं और उन दशाओं को दशाएं हुई, ओहो मैं सारा जीवन क्या, बहुत जन्मों में भी उस दुखों को मैं कभी नहीं भूल सकती। और दुख की बात तो क्या कहूं, जन्म मृत्यु जरा इत्यादि देह की जो आठ दशाएं हैं, उन किसी में भी तुम्हारे इस दुख को कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं जा सकती। हृदय मेरा सब समय तप्त रहता है और रहेगा। हे जसस्विनी देवी, मैं देवी हूं, हमारे हृदय में क्या कभी जागतिक वस्तुओं को देखने से, जागतिक लोगों के दुख को देखने से हमें दुख हो सकता है? नहीं। फिर भी हाय हाय, किसी सो भगवत इच्छा से मैं किसी अशुभ अवस्था क्षण में मैं तुम्हें देखने के लिए मैं आई। और मैं तुम्हें देख करके तुम्हारे दुख को देख करके वह दुख शेर की भांति मेरे हृदय में विद्ध हो रहा है। सखी वह शेर शूल हमारे हृदय से कैसे निकल जाए, कोई भी उपाय नहीं देखता जिससे कि हमारा वह शूल निकल सके। आप टिप्पणी में बतला रहे हैं इन सब श्लोकों में देवांगनाधारी श्री कृष्ण अपनी ही निंदा अपने आप कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है? श्रीमती राधिका की प्रीति कृष्ण के प्रति जो प्रीति है उसकी गंभीरता को परीक्षा करना चाहते हैं। मेरे पति राधिका का प्रेम कितना गंभीर है इसकी परीक्षा करना चाहते हैं। इस प्रकार का की निंदा सुन करके भी यदि प्रीति भंग हो जाती है या बिंदु मात्र भी कम जाती है तो नहीं, यदि कमती है तो जगत में ऐसी स्वच्छ प्रीति उपाधि रहित प्रीति का उत्कर्ष जगत में प्रतिष्ठित होगा। इसे समझो, कृष्ण निंदा कर रहे हैं कृष्ण की और इतने पर भी राधिका की प्रीति कम नहीं हुई तो क्या समझ आ जाएगा? यही निश्चय ही शुद्ध प्रीति है। इस प्रकार निंदा सुनने पर भी प्रेमी प्रेम मुकुटमणि राधिका राधिका के हृदय में जो प्रेम है उससे निकले हुए जो वचन है ये वचन सुधा अमृत है, उसको सुनने के लिए ही कृष्ण ने इस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया, इस प्रकार रोना दिखलाया। सब राधिका क्या कहती हैं मेरे मेरी निंदा को सुन करके, जिसको हम प्यार करते हैं और उसकी निंदा यदि की जाए और तभी प्रेम बढ़े तो वो प्रेम सच्चा है, और प्रेम कम जाए या प्रेम छूट जाए। गोपियों ने उद्धव से यही प्रश्न किया किंतु उत्तर नहीं दे सके, राधिका जी होती तो शायद उत्तर दे देती।
No. Sri Krishna continued, he disguised as a elderly lady, demigoddess. That time I saw Radhe, how you wept and lamented and cried. And in my whole life, and in many, many of my future births, I will never be able to forget your lamentation. Even if I undergo the eight changes of material existence, beginning with birth, death, growth, producing offspring, etc. Still, in any condition of my life, I will never forget that situation, that suffering that you experienced then. My heart never melted, seeing the different varieties of material suffering in this world. But the suffering that I saw you undergo at that time, that suffering has pierced my heart, and I can never remove it, nor can I forget it. What is happening here? Krishna is actually criticizing himself. Krishna wants to see and test, examine the death of Srimati Radhika's prayer for him. He wants to see if her prema decreases by any amount, or if it's broken completely. If it is not decreased or broken or disturbed in any way, but simply increases, this is the proof that Radhika's prema is completely pure and without any tinge of selfishness or material designation. Srimati Radhika is Prem Mukhadwali, the crest jewel of those who experience Prem. And Krishna wants to see her reaction when she hears Krishna's criticism. Krishna has come here to taste the nectar of Radhika's speech. If the beloved hears the faults of the beloved, but still the prem increases without interruption, this is the proof that this prem is pure. And if the prem decreases upon hearing criticism of the other, this is proof that that prem is not pure. The gopis asked the same question to Uddhava. Oh Uddhava, how did our prem break? Our prem was pure, but Uddhava could not give an answer.
पुनः कृष्ण बोलने लगे, हे सखी, तुम बड़ी सरल सीधी हो और तुम्हारे अंदर में इतना अच्छा स्वच्छ प्रेम, उसे देख करके तुम्हारे प्रति प्रगाढ़ प्रीति हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारा इतना दुख देख करके भी स्वर्ग लोक में चली जाना चाहती थी, किंतु नहीं गई, केवल तुम्हारे लिए। और मेरे लिए यहाँ पर इतना शोक से ग्रस्त होकर के रहना भी संभव पर नहीं होता, तब मैं नहीं रह पाती, यहाँ भी नहीं दुख, तुम्हारा दुख देख करके यहाँ भी नहीं रह पाती और तुम्हें छोड़ करके जा भी नहीं पाती। हमारे मन में सब समय एक चिंता रहती है, क्या करूं, इधर धैर्य नहीं धारण कर पाती, न जा पाती हूं न रह पाती हूं। इसीलिए बहुत दिनों के बाद में तुमसे मैंने भेंट किया और अपने मन की बात तुम्हारे सामने में मैंने प्रकट की। विशेष करके मैं कृष्ण से मैं बहुत डरती हूँ, कृष्ण से मैं बहुत डरती हूँ, विशेष करके क्योंकि कृष्ण में धर्म और लोक लज्जा कुछ भी नहीं है। कभी भी उन्होंने दया अपने हृदय में नहीं रखा, दयालुता से उनका कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। वे पाषाण हृदय हैं, पत्थर के हृदय वाले हैं। देखो, बचपन में स्त्री का वध किया, पुतना राक्षसी का निधन किया, किशोर अवस्था में वृष माने बैल गो जाति की हत्या की, पौगंड अवस्था में गोवत्स बत्सासुर नाम नहीं लिया, वो वही बतला रहे, गोवंश का की हत्या की। इस प्रकार बाल्यकाल से ही वे भीषण अत्याचारी और धर्म विरुद्ध कार्यों में लिप्त रहते थे। देवांगनाधारी श्री कृष्ण के मुख से कृष्ण की निंदा सूचक समस्त बातों को समन कर राधिका जी बड़ी धैर्य धारण करती हुई कहने लगी, ऐ सौभाग्यशालिनी, इसको कहते हैं कृष्ण को, नहीं समझी कि वो कृष्ण है, इसलिए देवंगना को देख करके कह रहे हैं तुम बड़ी सौभाग्यवान हो,
मेरे जो प्राण कांत मेरे मोस्ट बिलवेड प्रियतम कृष्ण की एक ऐसी अपूर्व चित्त आकर्षणी शक्ति है कि कृष्ण बहुत दुख देने वाले कार्य करते हैं तभी मेरा चित्त उन पर विरक्त नहीं होता। हमको दुख देने के लिए बहुत तरह के कार्य करते हैं किंतु उनमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जिसे मैं उनको पर विरक्त हो ही नहीं पाती कभी। सखियां मुझे बार बार समझाती हैं, उनसे प्रीति मत करो, दूसरे लोग समझाते हैं प्रीति मत करो, ललिता भी बहुत समझाती हैं, सरल मत हो, मुग्ध मत हो, किंतु मेरा मन ही नहीं मानता। मेरा अभिमान मेरा मान तब तक रहता है जब तक कि कृष्ण को नहीं देख लेती। जब ही कृष्ण को देख लेती हूं और मेरा मान तान सब दूर हो जाता है। मैंने कितनी बार सोचा हे मन तुम उसे प्रीति मत करो, मैं उसे प्रीति करना छोड़ना चाहती हूं, किंतु ज्यों ही दर्शन किया सब कुछ भूल जाती हूं। देखो ये सब प्रेम का लक्षण है। अब ये राधिका जी इसी को कहते हैं प्रेम संपूर्ण, जो प्रेम बक्से में बंद है इसको राधिका जी खोल रही हैं। यदि प्रेम करना है कृष्ण से तो ऐसे प्रेम करो। इसलिए ये सब हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, अपनी अनुभूतियों को सब भर दिया है। यदि प्रेम ऐसे प्रेम का गंध भी हो जाए तो आदर्श भक्त बन जाएगा। अभी तो हम साधारण बातों को भी नहीं छोड़ पाते। आज कहीं माधुर्य कदंबिनी की व्याख्या लिख रहा था, उसमें एक गुरु सेवा का उल्लेख है। उसमें जीव गोस्वामी लिखते हैं विषम्भेन गुरौ गुरौ सेवा, विषम रूप में गुरु सेवा। ये क्या है सेवा? सेवा यह है कि गुरु सेवा से सब प्रकार के मनोरथ भक्ति तक सब पर परिपूर्ण हो जाता है। कैसी सेवा? देखो यदि तुम सेवा में संलग्न हो उस समय हरि कथा श्रवण करने का भी यदि सुयोग हो और कुछ करने का सुयोग हो श्रवण कीर्तन और उसको वो छोड़ देता है सेवा, तभी उसकी मनोवांछा परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए गुरु सेवा में नियुक्त रहने पर जो साधक स्वाभाविक रूप में बनावटी नहीं श्रवण कीर्तन इत्यादि सब अंगों को भी छोड़ देता है तो प्रत्यवाय नहीं होता, दोष नहीं होता, बल्कि उसकी सारी इच्छाएं परिपूर्ण हो जाती। उदाहरण के लिए लो श्री शंकराचार्य जी, एक समय बद्रिकाश्रम में अपने चार पांच बड़े दिग्विजयी शिष्यों के साथ में बैठे थे और मंडन मिश्र और थे, सब लोग बैठे थे और उनका सेवक जो था वो मूर्ख कुछ नहीं जानता था। वो उनके रसोई बनाता था, उनके कपड़े धोता था, उनके पैर को दबाता था और सब सेवा करता था। आज वह जब हरि कथा का समय हो रहा था सुनने का, तो वो नदी के उस पार वो कपड़े धो करके सुखा रहा था और नदी में इतनी धारा है कि हाथी आए तो भी वो बह जाए और पुल जरा दूर था, इसलिए कपड़े सुखा रहा था। इधर समय हो गया, शंकराचार्य के बड़े बड़े विद्वान शिष्य लोग बोले, महाराज आप पाठ आरंभ कर दें। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार बोले, चुप रहे। आप किसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैं हस्तामलक के लिए, क्या नाम था उसके लिए प्रतीक्षा कर। अरे वो तो मूर्ख है, कुछ जानता नहीं है, वो क्या समझेगा आपके ये इस वेदांत को। और इतने में वो कपड़े लेकर और दौड़ता हुआ पुल से होता हुआ वहां पर उपस्थित हो गया और उपस्थित हो करके वेदांत से कठिन विषय पर भी अपना सुंदर श्लोक कह करके और शंकराचार्य की स्तुति करने लग गया। जो उनके समझ में नहीं आए कि क्या स्तुति कर रहा है, और देख करके सभी लोग चकित हो गए। ये गुरु सेवा का फल गुरु जी महाराज हमारे इसको बतला रहे थे हम लोगों से। इसलिए गुरु सेवा से सब कुछ हो जाता है ऐसा विश्वास करके स्वाभाविक रूप में ऐसी गुरु सेवा करेगा, उसकी सब प्रकार की मनोकामनाएं जरूर कृष्ण भक्ति पूरी होगी। अभी यही तक नहीं आया, हम लोग को यही समझ में नहीं आया, इतना विश्वास भी नहीं है गुरु पर। कुछ लोग तो गुरु को छोड़कर के बड़े बड़े विद्वान लोग चले जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, अभी निष्ठा परिपक्व नहीं हुई। इनको खूब अच्छी तरह से बतलाना, नाउ सो मेनी आर कमिंग and so many learned persons, scholars, that doubt in Guru, if Guru is real, Sadguru, even they are disobeying them, they have some doubt, and even they can give up their renounce order, sannyas and race form. But still, I tell something, that in whole group, one or half percent it may come, for that is Harikatha. I am telling the symptom of high class of love and affection of Radha. Try to hear and but be like that.
Shri Krishna in the disguise of the heavenly planet lady, she said, he said, "Oh Radhe, you are very, very simple and your prayer is unlimited and pure. Therefore, my mind is confused because I cannot leave your sangha for one moment. But in the same way, to tolerate the suffering that you undergo in the association with Krishna is very hard to tolerate also. So I cannot go or I cannot stay." Krishna continued, "I reveal my heart completely to you. But actually, I fear Krishna. He has all bad qualities. He has no shyness. He has no religious qualities. He has no mercy. In fact, he has no relationship with the word mercy. His heart is very hard, like a stone. I heard as an infant, he killed one woman named Putana. And at the age of Pauganda, he killed a bull called Aristasura. And in his young age in Kisora Avastar, he killed one calf, Vatasura. Therefore, his behavior is atrocious. Srimati Radhika heard everything. And she collected her patience. And she said, also Bhagyavati, most fortunate one, what can I do? Krishna has such a power of attraction that despite the fact that he gives me so much pain and suffering, my mind never leaves him even for a moment. Despite his causing so much pain to us, my mind always runs to Krishna. All have given me advice. Don't love Krishna. Do not give your affection to him. Lalita is always warning me. But what can I do? My mind cannot accept their instructions. And as soon as I see Krishna, his power of attraction is so great, my mind forgets all of these faults and all of these warnings, and my mind runs to him. I might, Radhika, continue. I myself have thought many times, I want to stop loving Krishna, but as soon as I get his darshan, I forget everything. Here, Radharani is Premsambhut. She is the box of love. And she is revealing her heart to us to describe what is prema. Our Guru Parampara very mercifully kept all this and opened their realizations to us. And if any of us can get one drop of this prema, of this moon, our lives will be completely successful. Guru Maharaj says, today I was reading Madhurya Kalabini and especially the commentary of Sri Jiva Goswami. There I saw Vishwambhara Guru Seva, Vishwambhara Guru Seva. One should serve the Guru with intimacy. If one serves the Guru with intimacy and affection, all of one's desires will be completely fulfilled. Even if one has to leave some of the angas of bhakti, like Shravan and Kirtan, but still the disciple's mind remains completely engaged in Guru Seva, for that disciple there will be no loss and all his desires will be completely fulfilled even if he leaves angas of bhakti like Shravan and Kirtan and stays in Guru Seva. This is Sri Jiva Goswami's commentary. Guru Maharaj said, I heard from our Param Gurudev, he used to tell all this to us, that Sri Shankaracharya passed. He was living in Bhadrik Ashram, and there he was surrounded by many of his very learned disciples. Amongst them, five were very prominent. But he had one disciple whose name was Giri. Everybody considered him very, very foolish, because he was always engaging himself in different types of Guru Seva. One day, Sri Sankaracharyapad was ready to give Harikatha, and all the learned disciples were there waiting, and again they asked, O Gurudev, you must speak. All of us are present except for that foolish Giri, but he doesn't understand anything anyone. So, Giri, in fact, he was across the other side of the river, washing the cloth of Sri Sankaracharya, and he was waiting for it to dry. That time the river current was so strong, it could sweep away even an elephant. Again and again the disciples asked, Gurudev, for whom are you waiting? Chalo, start. But Sankaracharya was silent. Meanwhile, Giri had dried and folded the cloth, and he ran up and crossed the bridge and came to the presence of his Gurudev. That time, Sri Sankaracharya was giving a very difficult section of the Vedanta, and Giri came and sat down, and immediately with his own verses, he began to describe the meaning of the Vedanta and also made up his own.
But he's citing slokas by his own.
He made up his own slokas, glorifying his Gurudev. Even his glorification was so high and such ornamental language, many of the others could not understand his language. So Sri Sankaracharya said, this is the result of Guru Seva. So Guru Maharaj said, we cannot even do this, but still we are hearing many, many high topics, the glorification of Radhika. Many, many learned persons have come and gone, millions have come and gone, Guru Maharaj saying about himself. Millions have come and gone, but they saw some fault in Guru. Oh, Guru doesn't know so much, this, that. Therefore, despite being so-called learned persons, even they gave up their sannyas and left saffron cloth and everything and left. Therefore, this is so much important, Vishwambhara.
These persons cannot tell Harikatha. If these disciples who left Guru, they are not qualified totally to tell any Harikatha. How they can? And they want to speak highly of love and affection of Radhika, but they have no Guru Bhakti. So, I think it will be better not to hear any word from them, if you like Bhakti. Isliye, don't try to listen him or her katha, because he has so many doubts and he has left. So he is not qualified to tell any Harikatha.